मेरे युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हालांकि कुछ छोटी छोटी बातें भी मेरे पास हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी हैं, लेकिन मैं आज वे बातें आपसे नहीं करूंगा। उसके लिए कल का हमारे पास वक्त है, कल का नहीं तो परसों का ही सही, क्योंकि कल बजट का दिन होगा। बजट तो आज पेश किया जा रहा है, अपने लिए बजट का दिन होगा कि कल हम उस पर बात कर सकेंगे। आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बारे में। कंप्लीट हम इसी विषय पर आज की अपनी बात को रखते हैं। आज के बात को दोस्तों आज हम पूरी तरह से इसी विषय पर रखते हैं, आर्थिक समीक्षा, जिसे अखबार में आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। इंग्लिश में यह है इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए, जब इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं तो स्वाभाविक है कि सर्वे का वैसे अनुवाद सर्वेक्षण होगा, लेकिन इसकी जो पद्धति है उसमें आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं एनालिसिस भी दिखाई देगी। तो इसीलिए चरित्र के आधार पर और संज्ञा के आधार पर कुछ लोग इसे आर्थिक सर्वेक्षण कह देते हैं, कुछ लोग इसे आर्थिक समीक्षा कह देते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा आर्थिक समीक्षा 2020-21। ये 2020-21 क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर है। देखिए, हम 21 में प्रवेश कर गए हैं, 2020 से हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो यात्रा होती है वो 1 अप्रैल से होती है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर लास्ट मार्च 2021 तक का जो परिदृश्य है, हमारा आर्थिक परिदृश्य, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? खासकर मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल आए हैं जिन्होंने एक तरह से पूछा है कि सर, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये इतना बड़ा होता है, 350 पेज का होता है, इसको हम कैसे समझें, कैसे इसको हम हैंडल करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें। मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करने जा रहा हूं। ये केवल आर्थिक समीक्षा के बारे में ही नहीं है, बल्कि किसी भी टॉपिक के बारे में है। आप रोजाना 20 पेज का अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश का अगर अखबार है तो उससे भी ज्यादा पेज के हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तब सवाल यह है कि उसमें से आपको क्या पढ़ना है, तो आपके पास क्या पैरामीटर है, क्या आधार हो सकता है। सिविल सर्विस की तैयारी, इनफैक्ट सच पूछे तो कभी कभी मुझे, मेरे दिमाग में एक दृश्य आता है जब इसके बारे में मैं सोचता हूं, कि आप एक विशाल समुद्र में तैर रहे हैं और वहां केवल दो ही चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। जब आपकी आंखें ऊपर उठती हैं तो आसमान दिखाई देता है, नीला आसमान, और जब सामने नीचे अगल बगल में आप देखते हैं तो केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, यानी कि कोई दिशा नहीं है, दिशा बोध कराने वाला वहां कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है। और आपको तैरना है और तैर करके एक गंतव्य तक पहुंचना भी है, सिविल सर्वेंट बनना भी है, तो अब आपकी दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपनी दिशा चुनेंगे? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि जो आपकी दिशा होगी वह है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। तो जब हम इसे अपने आर्थिक समीक्षा पर अप्लाई करते हैं तो हमें देखना यह चाहिए कि आर्थिक समीक्षा में जो भी बातें कही गई हैं, इतनी सारी बातें कही गई हैं, उनमें से किन किन बातों का संबंध आपके अपने सिलेबस के पॉइंट्स से है। सिलेबस में ढेर सारे चैप्टर्स हैं, एक पॉइंट है उसके ढेर सारे सब पॉइंट्स हैं, तो आप देखें कि आर्थिक समीक्षा की कौन सी बातें इसमें जुड़ सकती हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, चाहे प्री के हों या मेंस के हों, आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कि आर्थिक समीक्षा पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। कभी कभार कुछ हो गया हो तो मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आर्थिक समीक्षा पर सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। हाँ, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचेगा मेंस में तो ये जरूर ध्यान देता है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक ऐसे टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, जिसकी चर्चा प्रधानता के साथ आर्थिक समीक्षा में की गई है और उसकी अखबारों में भी काफी डिस्कशन उस पर हुआ है, एडिटोरियल कमेंट्स लिखे गए हैं, लेकिन आपने उसकी चर्चा अपने आंसर में नहीं की है, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये बात जरूर आती है कि आपकी जो तैयारी है वो एक अलर्ट कैंडिडेट के रूप में नहीं है, आप सारी चीजों के प्रति सतर्क नहीं है, तो वहां वह थोड़ा सा मायूस होता है, बस दैट्स ऑल। और यही आप उसे मायूस न करें, आर्थिक समीक्षा आपकी मदद करती है, राइट? तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये दिशा बोध कराने वाला यंत्र है, याद रखिए। इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए, कि आप कहीं भी कुछ सुन रहे हैं आपका दिमाग खट से ये समझ जाए कि अरे ये तो मेरे काम का है, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप सिलेबस समझते हैं अब आप आर्थिक समीक्षा को पढ़ेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल इसी एक पॉइंट के आधार पर आप अपनी दिशा ढूंढ लेंगे कि इस आर्थिक समीक्षा में कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे काम की हैं। आप ये करके देखिए, आपको रास्ता पता लगेगा। आप ढेर सारी बातें बिल्कुल कट करते चले जाएंगे, कट करते चले जाएंगे, कट करते चले जाएंगे, और कुछ बातों को बकायदे नोट करते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे कि नहीं, ये मेरे काम के हैं। अब ये जो आर्थिक समीक्षा है, देखिए इसका नाम है आर्थिक समीक्षा, तो ऐसा लगता है कि इसमें केवल इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में बताया गया होगा, आर्थिक स्थितियों के बारे में बताया गया होगा। डेफिनेटली इकोनॉमी के बारे में ही समीक्षा होती है, लेकिन अब जो आर्थिक समीक्षा है उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा व्यापक हो गया है। उसमें अब सामाजिक क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है, केवल अर्थव्यवस्था की ही बात नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बकायदे देखें कि इस बार की आर्थिक समीक्षा में जो मेडिकल सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में बात की गई है, और बकायदे ये कहा गया है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है भारत में बढ़ाई जानी चाहिए। 1% लगभग हम जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, उसे बढ़ा करके 2.5 से 3% करना चाहिए, जबकि जो दूसरे देशों बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है इसमें मिलकर के काम करना चाहिए। जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा खर्चीला है, और ऐसा नहीं है कि वहां बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं हेल्थ की, और हेल्थ की में जो हमारे लोग हैं लगभग उनके पॉकेट का 60-70% खर्च मेडिकल पर हो जाता है, उसे घटा करके 30% किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें इस समीक्षा में कही गई हैं, और बकायदे कहा गया है कि मेडिकल के लिए नियामक बनाया जाना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, ये बात कही गई। अब आप देखिए, सामाजिक क्षेत्र का विषय है लेकिन आर्थिक क्षेत्र से कैसा जुड़ा हुआ है, और उसी के तहत बकायदे आपने एक शब्द और भी इसमें सुना है जो बहुत ही सुंदर शब्द है, जो पहली बार आया है, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स यानी कि हमारी जो मूलभूत सेवाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे संबंधित इंडेक्स की भी इसमें बात की गई है। उसके तहत जिन तथ्यों को रखा गया, आप जानते हैं हम सामान्य तौर पर कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसी में है कि पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, बकायदे घर होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, शौचालय, इस सब की बात कही गई है, इसका इंडेक्स तैयार करने की बात कही गई है, और ये सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब आप देखिए कि मेडिकल और जो हम बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसको अब इकोनॉमी से कैसे जोड़ा जा रहा है। उसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि जब व्यक्ति के पास ये सारी चीजें आराम से पहुंच जाएंगी, जैसा कि केरल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे देश कर रहे हैं, ये बेस्ट हैं बेयर नेसेसिटी फैसिलिटी अवेलेबल कराने में, तब जब लोगों को ये चीजें आराम से मिल जाएंगी तो वे अपने इस समय का इस्तेमाल, जो उनके पास समय बचेगा उसका इस्तेमाल वो प्रोडक्टिव कामों के लिए करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे और कुछ दूसरे कामों के लिए करेंगे, तो इससे जो आर्थिक गति है हमारे देश की वो तेज होगी, और जो फालतू का हमें इन पर खर्च करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है तो हेल्थ खराब हो रही है। अब हेल्थ खराब हो रही तो अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति की हेल्थ खराब हो रही है वो काम नहीं कर पा रहा है, कार्य के घंटे खराब हो रहे हैं, और उस पर इलाज के लिए सरकार को खर्च करना पड़ रहा है, तो दो तरफा मार हो रही है। तो इससे आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाएं तो जो आर्थिक गति है हमारी वृद्धि की वो काफी तेज हो सकती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब जो आर्थिक समीक्षा है उसमें बकायदे सामाजिक क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है, तो आपको ये देखना है कि समाज के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपके सिविल सर्विस सिलेबस में है, जिन पर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। मेडिकल के बारे में बात कही गई है, इसी के बाद देखिए कि जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्किंग है, जो प्रोसेस है, निर्णय लिए जाते हैं जिस तरह से प्रशासन में, चाहे वो टैक्स से संबंधित निर्णय हो, पर्यावरण से संबंधित निर्णय हो, उसके बारे में कहा गया है कि इसे सरल बनाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो प्रक्रिया है ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। केवल इसके लिए ही नहीं कि कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, बल्कि इसके लिए भी कि अगर कोई उसे बंद करना चाहता है तो उसके बंद करने के लिए भी उसे बहुत लंबा समय लगता है, यहां से परमिशन लो, वहां से परमिशन लो, तब जाकर के कहीं बात बन पाती है। तो इन्हें भी सरल किया जाना चाहिए। अभी मैंने प्रशासनिक प्रक्रिया की बात कही, तो दोस्तों ये प्रशासनिक प्रक्रिया आपके सिलेबस में है क्या? सिविल सर्वेंट वाली बात आप देखिए कि बकायदे आपके सेकेंड पेपर में, मेंस के सेकेंड पेपर में है, और मैं आपको बताऊं कि जो आर्थिक समीक्षा है बेसिकली आपके मेंस में ही काम आने वाला विषय है, चैप्टर है, मेंस में ही आप इसका समुचित तरीके से उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, आज जितना समय मेरे पास था, मुझे लगा कि मैं बजाय इसके कि आपको इसके आंकड़ों में उलझाऊं, इसकी जो मूलभूत बातें हो सकती हैं, जो बेस हो सकता है, एक ऐसा बेस जो आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करेगा, उस पर चर्चा करूं। और इसी आधार पर मैंने आज आप सबसे आर्थिक समीक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं। जहां तक डेटा और दूसरे रिकमेंडेशन का सवाल है, यदि कभी समय मिला तो मैं अलग से इस पर कुछ बातें करूंगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। मैं अपने ऑफलाइन और जो ऑनलाइन स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है उन पर आता हूं। ऑफलाइन क्लासेज जो हमारी 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली हैं, उसमें एडमिशन लेने वाले हमारे मित्र हैं सपना तुकाराम थांगे, जिनका गांव है करंडी, महाराष्ट्र से हैं। ऑनलाइन क्लासेज में एडमिशन लेने वाले 3 स्टूडेंट हैं, वैभव कुमार, लवी ध्रुवे और सईद अनवर खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं अमन पांडे, विजय शेरावत जयपुर से, एजाज अहमद जौनपुर उत्तर प्रदेश से, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, और दिव्या के सरवानी। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।